તારીખ 8/3/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 17.
तो अगर जीव ऐसा परिणाम करे तो सहज मात्र में जागृत होकर अपने ज्ञान स्वरूप में जागृत होकर सहज रूप से वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन माने आत्मभान को प्राप्त होता है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के सिवा और कुछ कल्पना मेरे विषय में मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसा भान हो जाता है, उसको कहते हैं भान दशा। मैं आत्मा हूँ ऐसे भान में ज्ञानी रहते हैं। जबकि ज्ञान दशा में जीव में फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ ऐसे भान में रहता है। जो कर्म जनित अवस्था है ऐसा मैं हूँ ऐसा भान उसको रहता है। उसको ज्ञानी कहते हैं कि वो अपने स्वरूप के लिए बेभान है, भान में नहीं है लेकिन बेभान है। सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर स्व स्वभाव रूप मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो सम्यक दर्शन से प्राप्त होगा वो आगे जाकर के निष्कर्म दशा यानी परिपूर्ण सुखरूप दशा आनंदमय कर्मानंदमय दशा को प्राप्त होता है, और किसी विनाशी अशुद्ध और अन्य ऐसे भावों में उन्हें हर्ष शोक संयोग उत्पन्न नहीं होता। और बाहर जो संयोगी पदार्थ है उसका वियोग होने वाला है इसलिए उनको विनाशी कहा है, और जो अपने भाव है उसमें मलिनता है अशुद्धता है रागादि भाव है ऐसे अन्य भाव है उसमें कहीं उसको राग द्वेष हर्षोक नहीं होता। हर्षोक है तो राग द्वेष का फल स्वरूप है, तो ये ठीक है वो ठीक है ऐसा हर्षोक उसमें उत्पन्न नहीं होता। इस विचार से स्वस्वरूप में ही शुद्धता संपूर्णता अविनाशता अत्यंत आनंदता अंतर रहित उसके अनुभव में आते हैं। जब स्वानुभव होता है तब क्या होता है इसका बहुत सुंदर वर्णन इस वचनामृत में आया है कि अपने स्वस्वरूप में ही शुद्धता अनुभव में आती है। सबने वो बात लेना है अंतर रहित अनुभव में आती है। अंतर मैंने डिस्टेंस, मैं शुद्ध हूँ उसमें मेरे में मैं कोई अंतर नहीं है, मैं स्वयं ही शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प भी बीच में नहीं होता। अंतर रहित अनुभव में आता है मेरे अभेद भाव से अनुभव में आता है कि मैं शुद्ध हूँ संपूर्णता मैं परिपूर्ण हूँ बिना किसी के अभी ही पूर्ण हूँ किसी की जरूरत नहीं है ऐसी अपनी परिपूर्णता सर्वगुण संपन्नता अंतर रहित अनुभव में आती है। इसमें भी अंतर नहीं है अभेद रूप से अनुभव में आती है। और अविनाशता मैं शाश्वत पदार्थ हूँ व्यापार स्वरूप हूँ मुझे कोई बाधा पहुँचा नहीं सकते न कोई मार सकते न कोई जला सकते न कोई डुबा सकते न कोई सुखा सकते न कोई छेद भेद कर सकते। अंग उपांग कट जाता है या काटा जाता है फिर भी आत्मा का टुकड़ा नहीं होता। जो अंग कट गया तो निर्जीव लगेगा उसमें कुछ नहीं ऐसा लगेगा लेकिन आत्मा का यहाँ से टुकड़ा नहीं होता। आज कट गया टुकड़ा हाथ में आया था देखा निर्जीव है जीव वहां नहीं रहता और जीव के प्रवेश टुकड़ा नहीं होता कभी किसी से किसी साधन से किसी शस्त्र से अस्त्र से जीव का जीव को खंडित नहीं कर सकते। टुकड़ा तो क्या होता है, खंडित नहीं कर सकते। जैसे बर्तन में कोई गोबा पड़ता है, ऐसा कोई गोबा भी नहीं पड़ता उसमें। ऐसी अव्याबाधता और ऐसी अविनाशीपना अंतर रहित अनुभव में आता है। 150 साल के लिए पूंजी मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो भी उतनी आधार बुद्धि रहती है कि हमको अभी कोई दुख नहीं पड़ेगा, तब हम दुखी नहीं होंगे। और अनंत गुण का अविनाशीपना मालूम पड़ जाए तो इसका आधार कितना ठोस होगा, कितना जबरदस्त होगा कि इसको कोई हिला सकते नहीं। समय सार में निद्रा अधिकार में बहुत बातें लिया है। मैं ऐसी बात लिया है कि अगर वज्रपात होता है तो भी तीन भुवन में वज्रपात होकर के तो उस ब्रह्मांड हिलता है, सम्यक दृष्टि अंदर से हिलता नहीं। क्यों? कि उनको अपने अविनाशीपना अव्याबाधत्व जो है तो अंतर रहित अनुभव में है। मुझे कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकते, मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। क्या कर सके, स्पर्श करे तो आगे बढ़े, मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसा दृढ़ अपना विश्वास है उसको कोई बिगा सकते हैं। कि मेरु को शाश्वत माना गया है, तीन लोक के मध्य में जम्बूद्वीप है, मनुष्य लोक में कुछ जम्बूद्वीप के मध्य में मेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन ऊंचा ऊंचाई है उसकी, 1,00,000 योजन, पर वो शाश्वत है, वैसा का वैसा ही दिखता है, फिर भी अनंत परमाणु इसमें आता है और जाता है। हवा चलती है तो अनंत परमाणु नए आते हैं, अनेक परमाणु अलग हो जाते हैं, क्योंकि मेरु वैसा का वैसा दिखता है। मैं तो मेरु से भी अधिक हूँ, क्योंकि मेरे में कुछ आता जाता नहीं। ऐसा लिया, ऐसा दृढ़ भाव, ऐसी दृढ़ता सम्यक दृष्टि को हमेशा हमेशा अपने स्वरूप आश्रय अंतर रहित परिणाम से होती है। इसमें भी अंतर नहीं है, विकल्प का भी अंतर नहीं है। अविनाशितता, अविनाशिता और अत्यंत आनंद दशा जब तो सम्यक दर्शन होता है तो अपूर्व आनंद होता है। पूर्व में कभी अनंत काल में नहीं आया हुआ ऐसा आनंद होता है। जैसे गवर्नमेंट के हर लिफाफे पे उसकी मोहर होती है, जैसे पत्र वाला वाला आता है, उसकी मोहर होती है। जो भी मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, पत्र लिखते हैं, मोहर वाले पत्र आते हैं, ये अनुभव दशा में एक मोहर लगती है आनंद की। आनंद मुद्रित अनुभव दशा होती है, उसी को ही अनुभव कहते हैं। आत्मा का अनुभव हुआ और आनंद नहीं हुआ ऐसा कभी बनता नहीं। इतना आनंद आता है कि ऐसा आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन ये भावना रहती है कि ऐसे आनंद के भोगवते भोगवता में ही हमारा अनंत काल रहा करो, रहा करो, रहा करो, ऐसी एक भावना साधक को परमात्मा को हमेशा रहती है। ये आनंद की आसक्ति हो जाती है, क्या निराकुल आत्मानंद की आसक्ति होने से अन्य पदार्थ की आसक्ति छूट जाती है। क्योंकि अन्य पदार्थ के प्रति जितना भी परिणाम जाता है, जितना रस से, जितनी मात्रा से जाता है, उतनी आतुरता और दुख होता है, होता है और अत्यंत आनंद का अंतर रहित सम्यक दृष्टि जीव के अनुभव में आते हैं। सर्व विभाव पर्याय में मात्र स्वयं को अध्यास से एकता हुई है, ऐसा अनुभव होता है। सर्व विभाव पर्याय में जितने भी राग द्वेष मोह आदि प्रकार के विभाव हैं, उसमें मात्र स्वयं को अध्यास से एकता हुई है, एक अध्यास हुआ है। अध्यास हुआ मैंने भ्रम हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मैं राज्य हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मनुष्य हूँ। उससे केवल अपनी भिन्नता है, ऐसा स्पष्ट, ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा अत्यंत प्रत्यक्ष, ऐसा अपरोक्ष उसे अनुभव होता है। कितना समझ दिया अनुभव के विषय में, कि जब अनुभव होता है तो सभी विभाव पर्यायों से मेरी अत्यंत भिन्नता है, ऐसा अनुमान नहीं लगता। ऐसा स्पष्ट और प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, और थोड़ा प्रत्यक्ष नहीं, अत्यंत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से अनुभव में आता है। सर्व सभी प्रकार के विभाव से बिल्कुल भी भिन्न, मेरा स्वरूप विभावों से विरुद्ध जाति का केवल चैतन्यमय है, कहीं भी मेरे और उनसे एकता कभी हुई नहीं है, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। जैसे कोई दूसरे पदार्थ में विभाव हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे कोई दूसरे पदार्थ में हो रहे हैं, ऐसा अत्यंत प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए विभाव की आकुलता वहां मालूम पड़ती है। जन्म जरा मरण रोगादि बाधा रहित संपूर्ण महात्मा का स्थान ऐसा निज स्वरूप जानकर वेदन कर वह मैंने समय दृष्टि कृतार्थ होता है, कृतिकृत्य हो जाता है। तो उनको मालूम पड़ता है कि मेरा स्वरूप जन्म जरा मरण रोगादि बाधा रहित है, और जिसका महात्मा अधूरा नहीं, संपूर्ण महात्मा का स्थान भूत है, इतना महात्मवान स्वरूप है कि जिसकी महिमा पर्याय करती है, तो महिमा पर्याय में समाती नहीं है, घट अंतर में समाये, अंदर में वो समाती नहीं है। उतनी महिमा वस्तु की है और उतनी महिमा भाषित होती है, तो परिणाम में उत्पन्न होती है। ऐसा संपूर्ण महात्मा का स्थान, ऐसा निज स्वरूप है, ऐसा जानकर और उसको वेदन कर, उसको जानता भी है और उसका अनुभव भी करता है और उसको कृतार्थ होता है। तो उसको कुछ करने का रहा नहीं, अपने स्वरूप में परिपूर्णता देख करके कुछ करने का भाव नहीं आता। इसमें क्या करने का, इसमें लिया नहीं कि जिसको पहले मोक्ष की कामना अभिलाषा थी, लेकिन अपना स्वरूप अनुभव में आते वो भी बात छूट गई है। अभी मोक्ष भी जिसको नहीं चाहिए, उसको रूप हे परमेश्वर तुम क्या देगा, तुम क्या देने वाला हो। और हम तो ये परमात्मा स्वरूप में अभेद हो गए हैं, अंतर रहित पड़ा, मैंने अभेद अवैध मैंने अंतर रहित हमारा स्वरूप है, तो फिर उसमें लेने देने का क्या व्यवहार है? कड़ाकुट झंझट झंझट लिखा है, लेने देने की झंझट भी छूट गई है, क्योंकि वो पैसा को लेनी है और आपको देनी है, वो बात रहती नहीं है। कृतार्थता चालू हो जाती है, कृतार्थ होता है। जिन जिन पुरुषों को इन छह पदों का प्रमाण ऐसे परम पुरुष के पुरुषों के वचन से आत्मा का निश्चय हुआ है, वे सब पुरुष स्वस्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जिन जिन पुरुषों को, जिन जिन आत्माओं को, पुरुषों को माने जिन जिन आत्माओं को इन छह पदों से स्वप्रमाण ऐसे आत्मा का निश्चय हुआ है, किससे हुआ है? परम पुरुषों के वचन से हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है, उनके वचन से हुआ है। न अज्ञानी के वचन से होता है और न ज्ञानी पुरुष के वचन बिना होता है, तो बात साफ नहीं है। ऐसे ही वचन कोई ज्ञानी के होते हैं तो भी मान नहीं होता, और ज्ञानी पुरुष के वचन को झेले बिना और ज्ञानी पुरुष के वचन के योग्य अपने परिणाम किए बिना तो वचन का कोई फल नहीं आता, बिना वचन होता नहीं। कैसे वचन है वो आपको पच्चीस मिल रही है, तो बहुत जबरदस्त बात किया है, तो रेफरेंस तो दिया था। प्रत्यक्ष सत्पुरुषों का समागम जीव को कभी कभी भी प्राप्त होता है, परंतु यदि जीव सदृष्टिवान हो तो सदृष्टिवान है आत्मकल्याण की निष्ठा वाला वही दृष्टिकोण जिसने ग्रहण किया हो, ऐसा हो तो सत्स्वरूप के बहुत काल के सेवन से होने वाला लाभ, हजारों शास्त्र पढ़ने से जो लाभ होता है, इससे अधिक प्रत्यक्ष सत्पुरुष के समागम से बहुत अल्प काल में प्राप्त कर सकता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष गुण अतिशयमान निर्मल चेतन के प्रभाव वाले वचन है। कैसे वचन है? कि जिसको गुण की अतिशयता प्रजा प्रकाशित हुई है, गुण की अतिशयता माने कि जो आत्मगुण प्रकट हुए हैं उसमें अतिशय है, अतिशय है माने चमत्कार है, चैतन्य का चमत्कार है। अच्छी बात चली थी, अनुभवी पुरुष के चरण में विद्धि सिद्धि को आलोकती है। हिंदी में क्या कहता है? आलोकती को आलोकती कहते हैं, लोकती है, लोकती है, गुजराती में आ शब्द आलोकती है, आलोकती है। तो ये अतिशय है, चमत्कार है, आत्मा के गुण का चमत्कार है। प्रत्यक्ष गुण अतिशयवान निर्मल चेतन, जिसको चमत्कारी गुण प्रकट हुए हैं, ऐसा निर्मल चैतन्य से प्रभावित हुए ऐसे व्यक्ति निकलते हैं। क्यों इससे सम्यक दर्शन होता है? प्रत्यक्ष योग में क्यों सम्यक दर्शन होता है? कि वचन है वो निर्मल चैतन्य से प्रभावित है और भक्ति क्रिया से शिप्त है, तो इनके परिणमन में वृत्ति, वृत्ति में यानी परिणमन में क्रिया चेष्टित्व है। एक परिणमन की जो क्रिया होती है उसमें एक चेष्टा होती है, खास प्रकार की एक चेष्टा होती है, वो चेष्टा भी सुनने वाले को नजर आती है। कि जिस चेष्टा में चैतन्य रस भरा है, आत्मरस भरा है, ऐसी एक चेष्टा भी उसमें होती है जो आत्मरस से सराबोर होती है, वो भी दिखने में आती है। तो वचन के साथ चेष्टा का भी जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो तो ग्रंथ में से कहाँ से होगा? जो तो सजीवन मूर्ति में होगा वो ग्रंथ में कहाँ से होगा? ये पुरुषार्थ, ये फोर्स, ये आत्मरस, ये आत्मशांति, वितरागता, अंतर्मुखता, ये सब कहाँ से दिखने? तो वो क्रिया चेष्टित्व में वो दिखने में आता है। क्रिया की चेष्टा में कई प्रकार के भाव जो एक साथ चेष्टा रूप होते हैं वो नजर आते हैं। तो मनुष्य को भी ऐसा परिणमन होने का एक प्रकार बन जाता है निमित्त में निश्चित संबंध का। जिनको वैसा समागम प्राप्त हो ऐसा विशेष प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसा समागम रहा करे, प्राप्त हुआ करे, ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ जिनको करना चाहिए। वैसे योग के अभाव में सत्पुरुष का प्रत्यय करना, अगर ऐसा योग नहीं हो काल में तो सत्पुरुष का परिचय करना, लेकिन वो सत्पुरुष भी कैसा होना चाहिए इसका भी वर्णन किया है कि जिसमें शांत रस की मुख्यता हो, आत्मा का शांत रस जिसमें अभिव्यक्त हुआ हो, ऐसे शास्त्र होना चाहिए। शांत रस के हेतु से जिसका समस्त उद्देश्य हो और शांत रस उत्पन्न कराने के हेतु से जिसमें उपदेश दिया हो और जिसमें सभी रसों का शांत रस से गर्भित वर्णन किया हो। सभी रस में नौ प्रकार के रस होते हैं। शौर्य रस होता है तो भी उसमें शांत रस की गर्भिता होती है, पुरुषार्थ की बात आएगी तो शौर्य रस आएगा। तो ये जीव उछाल तेरे पुरुषार्थ को तेरे स्वरूप के प्रति, ऐसे महापुरुष के चरण होते हैं। तो तेरा अंदर में जो महापुरुष है इसका चरण धोने के लिए तेरे परिणाम को, प्रभाव को उछाल उसी के तरफ। ऐसे शौर्य रस के भी कई बातें आती हैं, वो शांत रस गर्भित आती है, उसमें शांत रस हर प्रकार के वर्णन में शांत रस रहता है। एक महात्मा सुंदरदास हैं, उसका सुंदर विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें बहुत रसों का वर्णन किया है और उसका एक शौर्य रस का जो वर्णन है तो उसका उदाहरण कृपालु देवी एक पत्र में किया है। शौर्य रस का बात आया है, कितना सुरवीर होता है, यानी कितना सुरवीर होता है, कुछ मिलेगा सुंदरदास जी का जो पद है। मारे काम क्रोध सब परम पुरुषों के वचन से वचन से वो बात चली। परम पुरुष के वचन कैसे होते हैं? आत्मा का निश्चय हुआ है, वे सब पुरुष स्वस्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनको अपना स्वरूप का अनुभव हुआ है। और जब अनुभव हुआ है तो क्या हुआ कि आधे व्याधि उपाधि और सर्व संग से रहित हुए हैं और होते भी हैं और भविष्य काल में भी वैसे ही होंगे। तीनों काल में जिसको स्वस्वरूप की प्राप्ति हुई है उसको आधे व्याधि उपाधि रहित पना हो जाता है ना, आधे व्याधि उपाधि उसको हो सकती है, उसको आ सकती है, कुछ नहीं होता और सर्वसंग से रहित हो जाते हैं, सर्वसंग से भिन्न हो जाते हैं। वर्तमान में भी ऐसे होते हैं ज्ञानी और भविष्य काल में भी वैसे ही होंगे। इसलिए कहते हैं कि जिसको सभी प्रकार के दुख से छुटना हो उनके लिए ऐसा शांत और सुखमय मार्ग और कुछ नहीं है और दूसरा नहीं है।
बता दिया कि कैसे पुरुष
स्वरूप
को प्राप्त होते हैं,
मतलब
यहाँ पे ये बता दे कि किसको होता है समय दर्शन, जो परम पुरुषों के वचन से आत्मा का निश्चय करते हैं।
मतलब होता है वो आए उसको, जिसको परम पुरुष के वचन से आत्मा का निश्चय हुआ है वेश्व पुरुष सत्व स्वरूप को प्राप्त हुआ है,
होते हैं। अन्य कोई नहीं हो सकते,
दूसरे के वचन से नहीं होगा, होगा तो ज्ञानी पुरुष के वचन से ही होगा। तुम भी समय सार में भी वो बात लिया है, चाहे तो सुमालित व्याख्या में स्वस्वरूप का निश्चय होने की बात किया तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, ऐसा ये उद्देश्य दिया है निश्चय करना। लेकिन श्रुत ज्ञान द्वारा ऐसा लिया है, श्रुत ज्ञान किसको होता है कि जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसी अनुभव ज्ञान को ही भाव श्रुत ज्ञान कहने में आता है, और जिसको भाव श्रुत ज्ञान है उनके वचन को द्रव श्रुत कहने में आता है या शास्त्र कहने में आता है। इसलिए यही वचन जो है उसमें निमित्तत्व है दूसरे को समीक दर्शन या आत्मस्वरूप का निश्चय होने का, सिर्फ उसी वचनों में ही निमित्तत्व है, दूसरों को वचन में वो निमित्तत्व नहीं होता। जिन सत्पुरुषों को जिन सत्पुरुषों ने अब जो है चार पैराग्राफ में चार नमस्कार वचन लिए हैं, बहुत अच्छे प्रसिद्ध नमस्कार वचन है ये। जिन सत्पुरुषों ने जन्म जरा और मरण का नाश करने वाला स्वस्वरूप में सहज अवस्थान होने का उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार है। नमस्कार वचन आएंगे। क्यों भक्ति नहीं आएगी क्या? जिन सत्पुरुष के वचन से ऐसा सन्मार्ग मिला उनके प्रति भक्ति नहीं आएगी क्या? तो भक्ति तो करेंगे ही करेंगे। तो विजातीय आत्मसिद्धि शास्त्र में अंतिम पद क्या लिया कि जो देहातीत दशा में आए, देह से भिन्न दशा, अतीत दशा मैंने भिन्न दशा होगी जिसके, ऐसे ज्ञानी के चरणों में अगणित बंधन हो, एक दो बंधन नहीं हो, गिनती नहीं हो सके उतना बंधन है हमारा। तो ज्ञानी भी ज्ञानी को बंधन करते हैं, मूर्ख तो करे इसको क्या बड़ी बात है। ज्ञानी बनारसी दास ने किया शांत दशा तिन की पहचानी करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। तो ज्ञानी को समिसार पद लिखे हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि जो वंदन योग्य अवस्था है उनको वंदन करने में आता है। आचार्यों ने वो बात किया है, वृंदावमय कंबयम नियम सार, ऐसी सम्यक दृष्टि की सुंदर बुद्धि को देख करके हम नमस्कार करते हैं। सुचारु धिषणाम मैंने बुद्धि में सुंदर बुद्धि जिसकी होती है, ऐसे समय दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। जिन सत्पुरुषों ने जन्म जरा और मरण का नाश करने वाला और स्वस्थ रूप में सहज अवस्थान होने का उपदेश दिया, अस्ति नास्ति दो नुकसान इतना खत्म कर दिया और इतना बड़ा लाभ हो गया, उन सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार हो। उनकी निष्कारण करुणा की नित्य प्रति निरंतर स्तुति करने से भी आत्म स्वभाव प्रकट होता है। सत्पुरुष की स्तुति में सत्पुरुष का गुण की स्तुति करने से, कौन सा गुण है कि निष्कारण करुणा, ये सत्पुरुष का गुण है। आगे पीछे कोई सगा संबंध नहीं होता है, फिर भी सभी जीवों के लिए निष्कारण करुणा करते हैं। जगत में द्वेष करने वाले के प्रति लोग द्वेष करते हैं, राग करने वाले के प्रति लोग राग करते हैं, जबकि ज्ञानी द्वेष करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं करते, न राग करने वाले के प्रति राग करते हैं। ये इसकी निष्कारणता है, इनको कोई कारण नहीं है। सबका हित हो, कोई जीव ऐसा नहीं हो कि जिसका हित न हो, ऐसा वो चाहते हैं कि सभी का हित हो जाए, जो भी हो सब सुखी हो, सब सबको हित हितोपदेश वो देते हैं कि सबको ये उपदेश दिए, किसी को वंचित रखना नहीं चाहते। ऐसी जिसकी निष्कारण करुणा है, ऐसी करुणा की नित्य प्रति निरंतर स्तुति करने से, नित्य और निरंतर स्तुति करने से स्तुति करने वाले को भी आत्म स्वभाव प्रकट होता है। ऐसा क्यों? कि उसमें दर्शन मोह है वो गल जाता है। ज्ञानी के गुणानुवाद करने से दर्शन मोह गलता है, एक दर्शन मोह को गालने के लिए, दर्शन मोह को तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान में आसान तरीका वो है, इसमें कोई माथापच्ची सी नहीं है। शास्त्र पढ़ोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाते हुए भी अगर हमारे मति दोष होगा तो उल्टी सुलटी बात समझ में आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, या सुलटी समझ में आएगी तो भी परलक्षित समझ होगी तो अहम भाव शास्त्राभिनिवेश उत्पन्न हो जाएगा। जबकि सत्पुरुष के गुणानुवाद करने में तो कोई जोखिम नहीं है, दूसरे दूसरे सब प्रकार के साधन में कुछ न कुछ जोखिम है, इसमें कोई जोखिम नहीं। सहज मात्र में दर्शन हो गए होता है,
इसमें अगर एकांत हो तो, इसमें भी अगर एकांत हो तो, एकांत भक्ति हो तो,
एकांत भक्ति मैंने ओक संज्ञा से हो तो एकांत भक्ति है। पहचान वाले को तो पूरी भक्ति होने पर भी वो एकांत नहीं होते, और एकांत उसको कहो तो वो सम्यक एकांत होती है, ऐसे होती है। तो दिया है ना, एकांत ज्ञान मार्ग, एकांत क्रिया मार्ग और एकांत भक्ति मार्ग। तो एकांत भक्ति मार्ग माने क्या होता है, तो जिसमें बिना पहचाने पूर्व संज्ञा से ये भक्ति का भक्ति करता है तो उनको उसका दर्शन हो उतना गलता नहीं है जितना गलना चाहिए, थोड़ा बहुत गलता है, लेकिन वो भक्ति एकांत भक्ति विशेष समय लंबा जाती है तो उसमें से उस भक्ति का भी अहम भाव हो जाता है, ऐसा भी बन सकता है। तो एकांत भक्ति का तो निषेध किया, लेकिन एकांत मैंने अत्यंत भक्ति नहीं होना वो बात नहीं है, जिसको पहचान होती है उसको अत्यंत अत्यंत भक्ति होती है, उसको एकांत भक्ति कही नहीं जाती। तो पहचान वाला ऐसी भक्ति करेगा कि हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसे तो बात आएगी कि हमको हमारा परमेश्वर मिल गया है अब हमको क्या चाहिए। चलो तो ऐसा भी दूसरे को लगेगा कि ये एकांत हो रहा है, लेकिन वो बैलेंसिंग है, इसमें सब प्रकार का विवेक है, ऐसा होता है। गुरुदेव तो हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, तो एकांत भक्ति है कि नहीं है? कितना लिया है ओवर माउंट, कोई मर्यादा नहीं रखे, भक्ति की कोई मर्यादा नहीं रही, सबके सबसे ज्यादा भक्ति तीर्थंकरों की होती है सर्वज्ञ परमात्मा, इससे भी ज्यादा भक्ति अपने सदगुरु की। एकांत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐसा ही होता है। निश्चय प्रधान इतने चर्चा करने वाले, इतने भक्ति प्रधान होते हैं तो अंधा जाना मुश्किल है, लेकिन दोनों साथ रहता है। जितने निश्चय की प्रधानता उतनी भक्ति की प्रधानता आए बिना नहीं रहती, इसका सबूत। उनकी निष्कारण करुणा की नित्य प्रति निरंतर स्तुति करने से भी आत्म स्वभाव प्रकट होते हैं होता है। ऐसे सर्व सत्पुरुषों के चरणारविंद सदा ही हृदय में स्थापित रहे, कैसी भावना लिया है, जो भी ज्ञानी है इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, उनको उतनी महिमा आती है। ज्ञानी पुरुषों के जिसके चरणारविंद को हम स्थापित करते हैं हमारे हृदय। और एक और भी जीवन दृष्टांत सौभाग्य का मिलता है, सुभाग भाई को तो अत्यंत भक्ति थी ही, फिर भी डिग्री डिग्री में फर्क होता है। तो वो पिछले जो छह सात महीना है उसमें वो भक्ति की जो आतुरता है वो बहुत बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि उस आतुरता के वश उनके प्राण टिकना मुश्किल हो जाए, कितना जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अब हम आपके दर्शन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, बस आना हो तो आना, मत आना हो तो मत आना, क्योंकि बहुत वायदा किया था, छह सात महीने तक वायदा ही करते रहे। अब उन्होंने देखा कि उतनी उसको एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है, इसका भक्ति का इसका एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है, तो अब हम जो कहेंगे वो उठा लेगा, अब हमारी बात को गिरने देंगे। तो फिर अपना प्रकट आत्म स्वरूप दिखा दिया, देखो ये हमारा स्वरूप है, प्रकट प्रत्यक्ष दिखा दिया, जैसे हथेली में दिखाते हैं ऐसे दिखा, भाव वासन हो गया और अनुभव भी हो गया, लेकिन कहाँ तक ले गए भक्ति में भी कहाँ तक ले गए, वो उतना खींचा तो हद आ गई, प्राण छूट जाएगा। अब तो निर्मलता आ गई, क्या हुआ इससे, प्रोसेस क्या हुआ, जो समझने की चीज है वो है कि उनको जो भी आतुरता हुई दर्शन की थी तो सही, लेकिन तीव्र हुई और तीव्र हुई और तीव्र हुई, जितनी तीव्र हुई उतनी निर्मलता आई। निर्मलता आने से स्वस्वरूप का भाव भाषण ऐसे ही हो गया, वरना दिखाने पर भी देख सकते हैं। इसके लिए निर्मलता चाहिए, आत्मा शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध उत्कृष्ट शुद्ध है, तो उसमें लिया ना 833 में लिया, तो ऐसे निर्मल पदार्थ को देखने के लिए दृष्टि भी निर्मल चाहिए। उतनी निर्मलता थी कि सत्पुरुष को पहचाना था, उनको पहचानने के लिए भी निर्मलता चाहिए, लेकिन स्वस्वरूप को पहचानने के लिए और निर्मलता चाहिए, वो निर्मलता नहीं आती थी। तो प्रयोग किया उनके पर, वो प्रयोग से उनको बहुत आतुरता में ले गए, बहुत ले गए, तो निर्मलता भी उतनी आई, तो जो स्वरूप दिखाया तो देख लिया।
परमेश्वर बुद्धि जब तक एक के भाव में परिवर्तित नहीं होती है तब तक उतनी निर्मलता नहीं।
और एक भाव में भी चरम सीमा की डिग्री होती है, तब वो आत्मानुभव से वो मुमुक्षु जीव फिर वंचित नहीं रह सकता, उसको स्वानुभव होना वो सहज है और आसान है, और यही एकमात्र इसका उपाय है। निर्मलता और लाएगा कहाँ से, कोई भी मुमुक्षु जीव को निर्मलता, इतनी हद की निर्मलता आने का कौन सा दूसरा उपाय है, कौन सा इलाज है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है, कोई ऐसा प्रयोग भी नहीं है, कैसे निर्मलता आ जाए, कहाँ से आएगी, ऐसे ही है, क्योंकि स्वरूप पहचानने में आया नहीं, तो स्वरूप का तो भाव भाषण हुआ नहीं। स्वरूप तो निर्मोही तत्व है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है, भाव भाषण नहीं है। एक निर्मोही तत्व सत्पुरुष है, उसकी पहचान है, तो उसकी जितनी महिमा की डिग्री बढ़ेगी उतनी निर्मलता आएगी, सीधी साधी बात है। इस तरह से निर्मलता आपके साथ
ही आपके साथ
लाके रूप निहालता है वह गुरु बात किया है। नाके रूप निहालता नासिकाग्र दृष्टि होते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में क्या होता है, नासिकाग्र दृष्टि होती है तो अपना रूप देखते हैं। वहां रूप निहालता मैंने स्वरूप निहालता नाके रूप निहालता तो वह डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग मैंने द्वि अर्थ की बात है, जिसकी शकल में नाक की आकृति नाक का शेप बहुत अच्छा होता है वो स्वरूपवान दिखता है। नमड़ा सा अपने गुजराती माके मैं नाक केवु से तो नाके बहु नमणो से नाके नमणो से अने बहु रूपाळो होय पण जो नाक चीबू होय नाक में ठेकाणो न होय रूप नहीं देखा। तो कोई कवि लीधु के नाके रूप निहालता तो हाँ एम ये अर्थ निकले एम अर्थ निकले कि भगवान ध्यानस्थ अवस्था में स्वस्वरूप निहाले नासिकाग्र दृष्टि तो एमने अलौकिक अर्थ कायदो है। लौकिक अर्थ नहीं कायदो अलौकिक अर्थ कायदो है। नाके रूप निहालता इस चरण का अर्थ वितराग मुद्रा सूचक है। ऐसे आते हैं तो वितराग मुद्रा हो जाती है, हनुमान वितरागता प्रदर्शित होती है, अंतर्मुखता प्रदर्शित होती है। रूप अवलोकन दृष्टि से स्थिरता प्राप्त होने पर स्वरूप अवलोकन दृष्टि में भी सुगमता प्राप्त होती है। रूपावलोकन दृष्टि से ऐसे भगवान का रूप का अवलोकन करने की दृष्टि दृष्टिकोण दृष्टि मैंने दृष्टिकोण व्यू पॉइंट उससे स्थिरता प्राप्त होने पर और उसका बार बार विजुअलाइज होने से दृष्टिकोण की स्थिरता आती है तो अपना स्वरूप अवलोकन दृष्टि में भी सुगमता प्राप्त हो जाती है। यहाँ से यहाँ आता है अपना स्वरूप अवलोकन कैसे कब ऐसा होता है कि दर्शन मौका अनुभाग घटने से स्वरूप अवलोकन दृष्टि परिणमित होती है। तो जो स्वरूप का अवलोकन की दृष्टि जिसको परिणमित होती है उनको दर्शन मौका अनुभाग भी घट गया होता है तो उसको सत्पुरुष को पहचानता है उसका अनुभाग घटता है तो उनको वितराग मुद्रा भगवान की या सत्पुरुष की वितराग मुद्रा जो है को देखते हुए उनको स्वरूप अवलोकन दृष्टि का परिणमन अपने में हो जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड का एक विषय है तो यहाँ दो पंक्ति में लिया है। ये भी एक प्रयोग है जो तो दर्शन होता अनुभाग घटने से ही कि प्रयोग अनुभव गोचर होता है समूह का अनुभव गोचर नहीं होता है। कृपालु देव ने तो अनुसंधान इसलिए लिया है कृपालु देव ने क्या दिखाया कि रूप अवलोकन दृष्टि से स्वरूप अवलोकन में ले गए हो। देखो ये हमारा रूप है दिखता है तुमको वितराग मुद्रा में तो स्वरूप अवलोकन की दृष्टि हो जाएगी। ऐसे जैसे कोई शक्तिपात का प्रयोग होता है ऐसा एक प्रयोग होता है किया इधर में एक प्रयोग किया।